दाता भव हरिता मुक्ति विधाता हो। मैं नमो तुम्हें मेरे स्वामी, मुझको भी सिद्धि प्रदान हो। वह राजग्रही नगरी धन्य है, त्रैलोक्य गुरु जाते जन में। ऐ धन्य सुमित्र पिता माता सोमा भी, धन्य हुई जग में। जलो राजग्रही तीर्थ क्षेत्र की जय। भगवान मुनिश्रत का पुण्य चरित्र चल रहा है। महापुरुषों के पुण्य चरित्र को सुनने मात्र से भी पुण्य बंद होता है और पाप कर्म की निर्जरा होती है। जैसे आप पढ़ते हैं, तत्संग कथापि जगताम दुरितान हंती। हे भगवान, आपकी पुण्य कथा सुनने मात्र से प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप कर्म ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूर्य ऊपर लाखों किलोमीटर दूरी पर चमकता है और धरती के अंधकार को नष्ट करते हुए कमलों को खिला देता है। इसी प्रकार से हम सब भव्य रूपी कमल हैं और आप सूर्य हैं। आपके द्वारा हमारे मन कमल विकसित हो जाते हैं, इसीलिए इन भगवंतों की पुण्य पुरुषों की कथाएं सुनी जाती हैं। ऐसे मुनि सूरत नाथ भगवान जिनके चरित्र को आपको संक्षेप में जानना है कि उन्होंने राजग्रही नगरी में जन्म लिया। आज से लगभग 9-10 लाख वर्ष पूर्व उनके पिता का नाम सुमित्र, माता का नाम महारानी सोमा देवी था। क्षत्रिय वर्ण के वैडूर्य मणि माने नीलमणि, नीलम मणि के समान उनका नीलवर्णीय शरीर था। 30,000 वर्ष की आयु थी। भगवान श्रावण कृष्णा द्वितीया के दिन सुमित माता सोमावती के गर्भ में आए और वैशाख कृष्णा दशमी को उनका जन्म हुआ। वैशाख कृष्णा दशमी को ही उन्होंने दीक्षा धारण की। पुनः नील वन के अंदर जाकर चंपक वृक्ष के नीचे उन्होंने दीक्षा धारण की। वैशाख कृष्णा दशमी को उनको प्रथम आहार प्रदान किया राजग्रही के राजा वृषभसेन ने। खीर का आहार दिया। पंचाक्षर की वृष्टि हुई। देवताओं का आगमन हुआ और केवल ज्ञान भगवान को केवल ज्ञान हुआ नील वन में चंपक वृक्ष के नीचे ही, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी उसी वन में उन्हें केवल ज्ञान हुआ। वैशाख कृष्णा नवमी को केवल ज्ञान हुआ। पुनः फाल्गुन कृष्णा द्वादशी को सम्मेद शिखर से उन्होंने मोक्ष धाम को प्राप्त किया। जब उनकी आयु 1 माह की शेष बची थी तब वे सम्मेद शिखर पर पहुंच गए और वहां पर योग निरोध करके समोसरण विघटित हुआ और मोक्ष को प्राप्त किया था। बाकी उन्होंने पूरे आर्यखंड के अंदर विहार किया। उनके समोसरण के अंदर बहुत सारे गणधर थे। उनमें 18 गणधर 18 गणधरों की संख्या आई है, जिसमें मल्ली नाम के गणधर प्रमुख गणधर थे। गणिनी आरिका पुष्पदंता थी, जो 50,000 आरिकाओं में प्रमुख थी, और 30,000 मुनिराज उनके समोसरण में थे। 1,00,000 श्रावक, 3,00,000 श्राविकाएं, और भगवान के शासन देव वरुण देव थे, और शासन देवी का नाम था बहुरूपिणी देवी। यानी आज 2552 वीर निर्वाण संवत चल रहा है। आज से 11,86,554 वर्ष पहले भगवान मुनि सूरतनाथ ने समय शिखर से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। ये परिचय मैंने आपको संक्षेप में बताया, बाकी आपने जाना है कि उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उनके 3 भव पूर्व से मुनि सूरतनाथ भगवान का कथानक प्रारंभ किया है। जब चंपापुर के राजा हरिवर्मा के रूप में उन्होंने अनंत वीर नाम के मुनिराज का उपदेश सुना और उन्हें वैराग्य हो गया, पुनः दीक्षा धारण की और 11 अंग के श्रुत के ज्ञानी हुए। उन्हीं अनंत वीर मुनिराज जो श्रुत केवली थे, उन्हीं के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और आगे जाकर संलग्ना पूर्वक मरण करके प्राणत स्वर्ग में 14वें स्वर्ग में प्राणत इंद्र के रूप में जन्म धारण किया, जहां 20,000 वर्ष की आयु को समाप्त करके पुनः राजग्रही में आकर के वे तीर्थंकर के रूप में जन्म धारण करते। तीर्थंकर भगवान मुनि सूरतनाथ के काल को भी हमने आपको जीवन परिचय के रूप में बताया कि किस प्रकार से युवराज अवस्था से उन्होंने राज्य अवस्था प्राप्त की। पिता ने उन्हें इंद्र की सहमति से, इंद्र के सहयोग से अपना मुकुट पहनाकर उन्हें राजा बनाया। उन्हें सूरतनाथ का विवाह हुआ। रानियों के साथ रहते हुए अनेक पुत्र पुत्रियों के पिता बने और एक हाथी के पूर्व का जाति स्मरण रूप जान करके उस ज्ञान से उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने जाकर के दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करके घोरातिघोर तपश्चरण करते हुए केवल ज्ञान की अवस्था आ जाती है, यानी उसी नील वन के अंदर चंपा के वृक्ष के नीचे भगवान मुनि सूरत को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप देखो क्या होता है, केवल ज्ञान ऐसे नहीं मिल जाता। जब तक मुनि की अवस्था में रहते हैं, 6ठे और 7वें गुण स्थान में भावों का परिवर्तन चलता रहता है और फिर छपक श्रेणी पर चढ़ करके एक साथ घातिया कर्मों का अंतर मोट में नाश करते हैं और 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमने बात गुण स्थानों की कही है, आप सभी को गुण स्थानों के विषय में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जैसे 14 प्रकार की क्लास होती हैं, जिन्हें पढ़ करके एक विद्यार्थी ग्रेजुएशन लेता है, स्नातक बनता है, उसी प्रकार से आत्मा के अंदर, प्रत्येक जीव की आत्मा के अंदर गुणों का आरोहण होता है और वे गुण स्थान कहलाते हैं। ये गुण स्थान 14 होते हैं। आप सबको गुण स्थान की संक्षिप्त व्याख्या आज मैं बताती हूँ। पहले नाम ध्यान देना है, मिथ्यात्व गुण स्थान, सासाधन गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान यानी सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान का नाम है, असंयत सम्यक दृष्टि या अविरत सम्यक दृष्टि जो भी कह लें, पांचवे गुण स्थान का नाम है देश संयत, छठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत, सातवां गुण स्थान अप्रमत्त संयत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, दसवां सूक्ष्म संप्राय, ग्यारहवां उपशांत कषाय, बारहवां क्षीण मोह या क्षीण कषाय, तेरहवां संयोग केवली और चौदहवां अयोग केवली। सबके साथ चल रहा है, आपके भी अभी हम जब बताएंगे तो आपको पता चलेगा आपका कौन सा गुण स्थान है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व माने जिस जीव को भगवान की वाणी अच्छी नहीं लगती, पदार्थ पांच अस्थि गाय छह द्रव्य इन पर श्रद्धा नहीं होता, मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है, उसके कारण सच्चे पदार्थों पर श्रद्धा नहीं हो पाता, इसी का नाम है मिथ्यात्व। और ऐसे भाव जिसके रहते हैं समझो उसका मिथ्यात्व गुण स्थान है। यह अंदर का थर्मामीटर आपको बताया जा रहा है, बाहर से तो किसी को पता ही नहीं है कि हमारे या आपके कौन सा गुण स्थान है, फिर भी इस थर्मामीटर के द्वारा आप जान सकेंगे। और दूसरे का नाम है सासाधन सम्यक दृष्टि। ये गुण स्थान पहले गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में जाते वक्त नहीं बनता, पहले से दूसरे में नहीं जाती। सम्यक्त की विराधना करता है, चाहे ऊपर ग्यारहवें गुण स्थान से गिरे, पांचवें गुण स्थान से गिरे, चौथे गुण स्थान से गिरे, तो जब सम्यक्त की आसाधना होती है, ध्यान से इसको सुनना, किस इसका नाम है सासाधन सम्यक्त। आसाधना विराधना माने सम्यक्त रूपी रत्न शिखर से गिरा, सम्यक दर्शन उसका समाप्त हो गया। और जब तक मिथ्यात्व की भूमि पर आया नहीं उतने, और जब कोई पर्वत से गिरा है तो धरती पर तो आएगा निश्चित है। अब उसके बीच का कार्य ने सम्यक दर्शन को एक पर्वत का शिखर बताया, उस शिखर से गिर करके उसे मिथ्यात्व में आना है। उसके बीच का जो बहुत छोटा सा काल है उसी का नाम है सासाधन सम्यक्त, माने सम्यक्त का घात करने के सम्मुख है, सम्यक्त की आसाधना कर दी, सम्यक्त की विराधना कर दी, सम्यक्त से छूटने वाला है, ऐसी स्थिति में उस जीव के सासाधन गुण स्थान होता है। ये गुण स्थान चढ़ने की अपेक्षा नहीं बनता, उतरने गिरने की अपेक्षा ये गुण स्थान बनता है। ये सासाधन गुण स्थान की बात हुई, बहुत छोटी सी अवधि इसकी होती है, यानी अंतर मुहूर्त काल आवली का काल होता है इसमें। और तीसरे गुण स्थान का नाम है सम्यक मिथ्या दृष्टि, जहां पर मिले जुले परिणाम होते हैं, संशय रूप परिणाम होते हैं, ना सम्यक रूप है और ना मिथ्या रूप है, ऐसा तो सम्यक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति एक होती है, उसके उदय से केवल सम्यक रूप परिणाम नहीं होगा, जो मिश्र रूप परिणाम होते हैं उसे मिश्र गुण स्थान कहते हैं। इसको उपमा दी है आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने, दही गुड़ मिवा मिश्रम, जैसे दही और गुड़ दोनों को एक में मिला दिया गया, तो दोनों का मिला जुला न उसे दही कह सकते और न उसे गुड़ कह सकते, दही में गुड़ मिल गया तो मिश्रित खट्टा मीठा स्वाद हो गया, ऐसे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन रूपी मिले जुले परिणाम जहाँ होते हैं वह सम्यक मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान कहा जाता है। इसमें क्या है कि एक वृद्ध की हिलती हुई लाठी के समान परिणाम होते, कभी सम्यक हाँ भगवान के तत्व द्वारा कहे गए तत्व अच्छे हैं, कभी दूसरे से प्रभावित होकर हाँ ये भी बड़ा अच्छा है, तो ऐसे समय में ये तीसरा गुण स्थान बनता है। और चतुर्थ गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, जहाँ सम्यक तो हो गया दर्शन मोनि कर्म, जो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोनि की तीन प्रकृतियां सब लोग याद करना, और अनंतानुबंधी की चार क्रोध मान माया लोभ, ऐसा क्रोध आ जाता है एकदम भड़क जाते हैं और वो एक भाव दो भाव कई भावों तक चला जाता है। तो ऐसी कसाई को अनंतानुबंधी कहते हैं। साथ जब तीन में जाती हैं दर्शन होने की तो सात कर्म की प्रकृतियां ये मिल करके इनका उदय उपशम क्षय क्षयोपशम ऐसी स्थितियां आती हैं। स्वयं परिणामों के अंदर ये परिवर्तन होता है कि नहीं भगवान के कहे हुए तत्वों पर हमेशा ध्यान करना है। इधर तो मन के अंदर भाव आया उधर ऑटोमेटिक प्लान चलता है कि एक सम्यक प्रकृति का तो उदय रह जाता है, मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय हो जाता है और सम्यक मिथ्यात्व का सदवस्था रूप उपशम हो जाता है। जैसे किसी ग्लास के अंदर पानी भरा है और उसके अंदर थोड़ा कचरा है और उसके अंदर कोई फिटकरी या कोई प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं तो ऊपर से वो निर्मल जल दिखने लगता है, नीचे उसके अंदर कचरा भर गया। जैसे उस ग्लास को हिलाया तो उसके अंदर से कचरा उसमें आ गया, जो भी थोड़ा बहुत उसके अंदर मैल बैठा है तो हिल जाने से ही वह पानी फिर गंदा हो जाता है लेकिन ऊपर से साफ साफ होता है। ऐसे कुछ परिणाम एकदम साफ स्वच्छ रहते हैं और जरा सा कोई निमित्त मिलते ही परिणामों में हलचल होती है। तो ऐसे समय में यह चतुर्थ गुण स्थान बनता है, इसको कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। पापों से छूटा नहीं लेकिन सम्यक दर्शन उसको हो गया। ये मैंने चतुर्थ गुण आज जितने भी सम्यक दृष्टि है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है और जब अणुव्रतों को ले लेते हैं तो पंचम गुण स्थान वर्ती बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 14 गुण स्थान में से 4 गुण स्थानों की व्याख्या आपको की। इसलिए किया है हमने कि किस प्रकार से इन गुण स्थानों को पार करके भगवान मुनि सुदत्तनाथ महामुनि की अवस्था में अभी छठे सातवें गुण स्थान में चल रहे हैं, केवल ज्ञान की ओर जाने वाले हैं, तो कैसे कैसे भी कर्मों का क्षय करेंगे इस बारे में आपको हमें बताना है। आज यहाँ पर इतना ही लेंगे।